को देता है, परस्पर के माँ एक दूसरे को आदान प्रदान करे, तो फिर दोनों ही मुक्ति न प्राप्त हो जाए। जिद्दी निष्काम भाव से भगवान कह गीता में सेवान भाव यता नहीं से देवा भाव यंत है, परस्पर भाव यंत है श्रेय परमापस्थ। भगवान कहे देवान भाव यता अनेन इस जग के द्वारा तुम देवताओं को चाहो और ते देवा और वे जो देवता है तुम्हारे को चावे, ये न तुम्हारा हित चावे। तुम तो देवताओं का हित करो और देवता तुम्हारा हित करे, इस प्रकार से परस्पर में एक दूसरे का हित करते हुए दोनों ही को मुक्ति मिलती है, दोनों को परम श्रेय नाम मुक्ति का है, दोनों का कल्याण हो जाता है। यह वो बात बताई, एक दूसरे को देवे, देवता तो मनुष्यों को मदद करे और मनुष्य करे देवताओं को मदद, कर्तव्य समझ करके निष्काम भाव से, तो दोनों को ही अपने परम श्रेय की प्राप्ति हुए। गीता तो कही रही है, युक्ति संगत भी है, युक्ति संगत इसलिए है अपन देवताओं की पूजा करी या जग करियो या जो भी कुछ करियो निष्काम भाव, तो मेरे को फलापन मुक्ति होनी चाहिए। और देवता भी निष्काम भाव से थी, आपने इच्छित भोग सु दिए, भी कोई कामना ने लेकर के नहीं, निष्काम भाव से तो उनको भी कल्याण हो। एक भाई पूछे कि कोई देवर कोई लेवे जो कि दोनों को कल्याण हो जाए, तो ये कल्याण आए कहां से? बोले ईश्वर के यहां से। तो बोले ईश्वर के या दोनों पार्टी को कल्याण हो? बोले हाँ, बट कोई अपने कमरा लाभ का जो थोड़ा ही कि भाई 11 सा आदमी आ गया तो ठहर गया और 5 तो घटे तेरा। भगवान के यहां तो समझो कि खुले दरबार है, बोले से लाख जाओ और 2 लाख जाओ और चाहे करोड़ जाओ, भगवान की कोई निष्काम भाव से आज्ञा का पालन करे उसका ही कल्याण हो जावे। एक आदमी जो है एक को देवर एक लेवे, तो देने वाला तो उपकार करता है, लेने वाले के सिर पर भार चढ़ता है, यह बात दिखा पाए। क्योंकि यदि देने वालों और लेने वालों दोनों ने लाभ हुए तो वो लाभ भाव करते हैं, बोले भगवान के करते हैं, भगवान के कोई कमी नहीं। तो यह बात तो समझ में आ गई, एक आदमी एक दूसरे को निष्काम भाव से उपकार करे तो उपकार की बुद्धि से निष्काम भाव से थी मैं वो कल्याण हो जाए। मैं निष्काम भाव से थी आपकी सेवा करूं और आप निष्काम भाव से थी मेरी सेवा करो, तो समझो कि दोनों ही को कल्याण हो। यह बात तो समझ में आवे, पर एक आदमी सेवा करने वालों है और एक सेवा कराने वालों है, उन दोनों के माँ भी दोनों का कल्याण हो जाए क्या? हाँ बोले उनका भी हो जाए। यदि वास्तव के बीच के माँ दोनों निष्कामी हो तो, बोले दोनों निष्कामी हुए तो सेवा करने वाला जो है निष्काम भाव से तो करने वाले की तो मुक्ति हो जा, आ तो समझ में आवे। और करवाने वाले की मुक्ति कैसे हुए? दान देने वाले की तो मुक्ति हो जा, किंतु दान लेने वाले की मुक्ति कैसे हुए? तो ये बात थोड़ी विचारने की है। समझ लो मैं आपने कोई चीज भेजी और थारे मन में यो भाव है कि भाई वह अच्छे आदमी है और उनकी चीज आपने खाने से आपने सुबुद्धि पवित्र हो, है तो वो सकाम भाव, पर एक प्रकार से इस भाव से ली तो देने वाले को भी फायदा, लेने वाले को भी फायदा हो या भाव से। और यदि ऐसी बात हुए कोई भी चीज आप मेरे पास मिली और मैंने वो चीज स्वीकार नहीं करी, किंतु आपके विशेष आग्रह से खाली एक प्रकार से आपके संतोष होने के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए मैंने कोई चीज आपकी स्वीकार कर ली कि न करने से इसकी आत्मा को दुख पहुंचेगा, तो उस चीज के लेने से क्या मेरे ऊपर ऋण चढ़ेगा? तो मैं जो लेने वाला हूं और आप देने वाले हो, तो मैंने वो चीज लोभ से ली तब तो एक प्रकार से मेरे ऊपर ऋण चढ़ेगा, और लोभ से नहीं लेकर के केवल आपकी आत्मा को संतोष कराने के लिए या आपको किसी प्रकार का दुख या एक प्रकार से न हुए इसलिए आपकी चीज में ली, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें देने वाला और लेने वाला दोनों में यदि निष्काम भाव होगा तो दोनों का ही कल्याण होगा, चाहे एक दाता हो और एक ग्रहीता हो। देने वाला यदि निष्काम भाव से कोई चीज देता है, सेवा करता है, कोई पदार्थ देता है, तो उसका कल्याण होना ही चाहिए, शास्त्र कहता है जुक्ति संग से। और लेने वाला जो है वो भी यदि निष्काम भाव से लेता है तो उसका भी कल्याण होना ही चाहिए, तो दोनों का ही कल्याण हो। बात भी समझ में आई कि एक सारी क्रिया क्या कि समझो कि दिन भर के बीच के माँ जो हम जितनी क्रिया करते हैं उसके माँ लौकिक व्यवहार भी है, व्यापार भी है, नीति की बात भी है, शरीर के स्वास्थ्य की बात भी है, सभी बातें हैं और वह सभी क्रिया कल्याण के करने वाली हो सकती है। उसमें उद्देश्य यह हुए कि संसार के हित का, लोक सेवा का या भगवान की सेवा का, तो ये जो भाव है सेवा का जो भाव है और उसके साथ में फिर निष्काम भाव भी होए तो शीघ्र ही कल्याण हो जावे और सभी क्रिया मुक्ति के देने वाली हो जावे। बोले अपने जो भोजन करें और वस्त्र पहरें वो भी चीज मुक्ति के देने वाली हो जा, वो भी हो जावे। भोजन किस लिए करें? भोजन यदि नहीं किया जाएगा तो शरीर कैसे रहेगा, और शरीर यदि कायम रहेगा तो इससे लोगों की सेवा करके, लोगों का उपकार करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेंगे। तो इस उद्देश्य से हम करें तो हमारे लिए वो भोजन करना भी कल्याणकारक होता है। भगवान की गीता में कहते भी हैं, यत करोषि यदसनासि यज्जुहोषि ददासि यत, यत तब से चिकोन्ते तत्कुरुष्व मदर्पण। हे अर्जुन, तू जो भी कुछ करे, अपने भोजन भी करे, जो कुछ यज्ञ करे, दान देवे, तब करे, वो सब तू मेरे समर्पण कर दे, अर्थात मेरे समर्पण कर दे। दूसरी बात है भगवान के लिए हम करें, भगवान के अर्थ, तो भगवान के अर्थ करने से स्थिति भी वो चीज कल्याणकारक हो जाती है। और भगवान के मां प्रेम होने के लिए करे तो भी, मुक्ति के लिए करे तो भी, सारी हमारी क्रिया मुक्ति के देने वाली जावे, क्योंकि सुबह शुभ फले रही हुए मोक्ष से कर्म बंद नहीं, और संन्यास योग युक्त आत्मा प्रतिमुक्तो मामो पैसे। साफ क्या है भगवान, शुभ और अशुभ कर्मों के फल के बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा, पर मुक्त हो या फिर मेरे को प्राप्त हो, क्या करने से कि तू जो भी कुछ क्रिया करे और जो कुछ खुद अपने शरीर पोषण के लिए भोजन करे और यज्ञ करे, दान देवे, तप करे, सब तू मेरे समर्पण कर दे, तो उसके करने से थी शुभ और अशुभ कर्मों के फल से मुक्त होकर के तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। सब बात भगवान कहते हैं, तो सारी हमारी चेष्टा भगवान के लिए कि भाई तुम रात में सोते क्यों, बोले भगवान के लिए। तो भगवान के लिए मैं भी बहुत रहस्य, एक तो ये है कि रात में भगवान का भजन करेंगे इसलिए नहीं सोते, तो भगवान के लिए हुआ, और ये एक भगवान के लिए कि चलिए हम भोजन नहीं करेंगे तो जीवेंगे नहीं, तो भगवान की भक्ति कैसे होगी, तो भगवान की भक्ति शरीर से होती है और शरीर की रक्षा भोजन से होती है, तो इसलिए मैं भोजन करता हूं। इसने कहा कि नहीं ये बात नहीं, प्रभु के साथ में हमारा प्रेम है और हम भोजन नहीं करेंगे और भगवान समझेंगे कि हम भूखा है, तो भगवान के मन के बीच के मन विचार होगा, तो हम भगवान को सुख देने के लिए हैं कि दुख देने के लिए, ये एक भाव है। तो भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान में प्रेम होने के लिए भगवान की आज्ञा पालन के लिए यदि उस काम के में हमारा निष्काम भाव होगा तो हमारी सारी क्रिया मुक्ति के देने वाली हो जाएगी। नारायण नारायण नारायण
यावर राम।
रामचंद्र की और एक आदमी दूसरे की जो सेवा करता है स्वार्थ का त्याग करके कर और निष्काम भाव से तो उससे अंतकरण की शुद्धि होती है कर्ता की। उसने बड़ा भारी काम किया, एक तो स्वार्थ को छोड़कर परोपकार किया और एक निष्काम भाव से किया। और निष्काम भाव का भी अलग अलग दर्जा होता है। एक तो ये दर्जा है कि सबके माँ भगवान विराजमान है और भगवान की चीज मैं भगवान को देता हूँ, वो चीज हमारी नहीं है, भगवान की है, भगवान के लिए दी जा रही है, तो ये तो बहुत उच्चकोटि का भाव है। भगवान के मां प्रेम होने के लिए भगवान की सेवा करना या परोपकार करना, भगवान के दर्शन के लिए भगवान की सेवा या लोक सेवा करना और भगवान के विग्रह की एक प्रकार से सेवा करना और इस उद्देश्य से करना कि ये जो भगवान हमारे से ये करवाते हैं ये भगवान की हमारे पर परम दया है, ये जो भाव है निष्काम भाव। और अपने शरीर की जो समझो कि भोजन है, वस्त्र है या कोई भी अपने शरीर की जो सेवा है उसके विषय के बीच के माँ एक तो ये भाव है कि मैं यदि अन्न वस्त्र को काम में नहीं लाऊंगा तो फिर सेवा मेरे से कैसे बनेगी, तो इस वास्ते मैं संसार में क्यों जीता हूँ कि अपने भगवान की सेवा के लिए और भगवान की प्राप्ति के लिए, अरे वो प्राप्ति शरीर से ही होगी तो मैं एक प्रकार से इस शरीर को किछु खाने पैरने को नहीं दूंगा तो शरीर कैसे जीवेगा, इस उद्देश्य से मैं भोजन करता हूँ या खाना पीना करता हूँ, बस पहनता हूँ, तो ये एक निष्काम भाव। दूसरा ये इससे एक भाव होता है कि मैं यदि भोजन नहीं करूंगा तो भगवान के साथ में मेरा बड़ा प्रेम है तो भगवान को हमारे प्यारे प्रेमी को यह कष्ट होगा कि भाई इसने भोजन नहीं किया, तो मैं भगवान को कष्ट कैसे दूं। तो इस भाव से जो आदमी भोजन करता है कि भगवान का मैं एक सेवक हूँ और भगवान मुझसे बड़ा प्यार करते हैं तो मुझ सेवक को एक प्रकार से भूखा देखेंगे और मेरे शरीर में जो कष्ट होता है उसका तो कोई बात नहीं है, किंतु मेरे कष्ट से मेरे प्यारे को जो कष्ट होगा वो मेरे लिए दुख की बात है कि मैं उसको कष्ट देने वाला क्यों बनूं। मेरे भोजन कर लेने के बीच के वहां यदि मुझको सुख मिलता है तो खैर कोई बात नहीं, किंतु अपने प्रभु को तो संतोष होगा क्योंकि उसके साथ में हमारा प्रेम है। तो ये जो भाव है एक निष्काम भाव ही। कोई भी क्रिया हमारी होए और उसके बीच के मां स्वार्थ का त्याग होए और वो स्वार्थ का त्याग भी निष्काम भाव ने लेकर के हुए, तो निष्काम भाव ये कि मान बड़ाई प्रतिष्ठा के लिए नहीं, केवल कर्तव्य समझ करके, और कर्तव्य समझ करके भी वो जो चीज जो किसी को दी जाती है तो उसमें ये भाव कि भगवान की चीज ही भगवान के लिए दी गई, इस उनके वहां मेरा एहसान क्या, और ये भाव होकर के भी ये जो भगवान ने हमारे से सेवा स्वीकार करी, ये भगवान की हमारे ऊपर विशेष दया है, ये भगवान का हमारे ऊपर उपकार है जो भगवान हमारे से सेवा स्वीकार करते हैं। कोई भाई हमारा सेवा स्वीकार करता है तो उसकी वो दया है, और ये चीज तो उसकी है, उसको जो दी गई, उसको जो एक ये काम सौंपा गया, ये उनकी हमारे ऊपर विशेष दया है। तो ये सभी निष्काम भाव एक से एक बढ़ते, तो जितना निष्काम भाव हृदय में बढ़ेगा उतनी एक प्रकार से प्रसन्नता होगी, और जितना निष्काम भाव बढ़ेगा उतना ही चमकेगा, तो उतना ही दूसरों के ऊपर उसका विशेष असर पड़ेगा, तो दूसरों को विशेष उससे लाभ होगा, लोगों को इससे शिक्षा मिलेगी। और मैंने जो समझो निष्काम भाव से किसी की सेवा की, उपकार किया, उस निष्काम भाव से जो हमारी आत्मा पवित्र होगी, हम जो परमात्मा के मार्ग में अग्रसर होंगे, ये बात साधारण, किंतु उस बात को देख करके दूसरों पर जो एक असर पड़ता है, और वे भी एक प्रकार से थी उत्सुक होकर के दूसरों के साथ के वहां उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, इस बात को सीख करके के, और उसके ऊपर जो एक असर पड़ता है, उसके चित्त में प्रसन्नता होती है, अरे वो उस बात को सीख कर उसका प्रचार करता है, वो भी एक समझो कि निष्काम भाव का प्रचारक बन जाता है, ऐसे देख कर करके, और उसके भाव को देख करके तीसरा प्रचारक बन जाता है। तो इससे आपने प्रथम जो प्रचारक है वही उसी को सबका श्रेय है, तो उसको और विशेष लाभ, ये और भी एक प्रकार से समझो कि फायदे की चीज। कोई भाई कहीं बाढ़ आ गई और उस जगह जाकर करके प्रता के भाव के वहां माल बिक्री किया, कहीं एक प्रकार से अकाल पड़ गया और वहां जाकर के खाने के पदार्थ समझो आपने अनाज वगैरह या कोई हलवाई की दुकान खोल करके मिठाई वगैरह मंदे भाव के वहां देता है, और दूसरे लोग भी उसको देख करके के ज्यादा लाभ नहीं कर सकते, वे भी मंदे भाव के वहां ही वहां चीज बेचते हैं, तो प्रथम इस उद्देश्य को रख करके के जो लोगों को सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से जो भाई काम करता है, और दूसरे भाई इस उद्देश्य से नहीं करते, वह एक प्रकार से थी उनको बाध्य होकर के करना पड़ता है, और उससे भी लोगों का उपकार हो जाता है, तो उसमें उसे प्रथम आरंभ करने वाले भाई को इससे है, कोई उसके लिए लाभ का भागी होता है। उदाहरण के लिए समझ लो कि कोई जगह अकाल पड़ गया और वहां बहुत से भाई लोगों ने चावल या धान या चना घी वगैरह मंगाए, इस उद्देश्य से मंगाए कि एक प्रकार से यहाँ अकाल पड़ गया है, इस साल के बीच के वहां अच्छा लाभ उठाएंगे। और एक दूसरा भाई परोपकार की दृष्टि से थी, वहां लाखों रुपयों का माल भिजा दिया, और भिजा करके खूब कमती दर के बीच के वहां बेचना शुरू कर दिया, और वो इस उद्देश्य से बेचता है कि लोगों का उपकार हुए, और भाव उसका निष्काम है। उसने कहा रे भैया यहाँ अकाल पड़ गया, तुम इतने यहाँ लखपति भाई हो, तो लोगों के उपकार के वास्ते जो दीन दुखी अनाथ आदमी है उनको एक प्रकार से कुछ मुफ्त में दो या कम दामों में दो, या एक चंदा किया, तो समझो कि चंदे के बीच के मां 50 आदमियों ने 100-100 रुपया चंदे का देकर के 5,000 रुपया उसको दिया, और वह 5,000 रुपया वो दान के विभाग में खर्च कर दिया, 5,000 रुपया। उसने कहा कि मैं मंदे भाव में माल बेचूंगा, उसके लिए भी कुछ चंदा कर करके दो। बोले नहीं, तुम यदि मंदा बेचोगे तो हमारा माल कैसे बिकेगा, हम दो पैसा रोजगार के लिए माल लाए हैं, इस काम के मां हम आपको मदद नहीं करेंगे। उसने कहा अच्छा भैया नहीं करो तो मत करो, किंतु उसने लाख रुपया का माल पड़ता भाव से बेचा, सफलता भाव से बेचने के कारण से और लोगों ने भी पड़ता भाव से बेचना पड़ा, तो उसका कि वहां कोई 20 लाख का माल पड़ता भाव में बिक गया, तो भी 20 लाख के रुपयों से जो लोगों को मदद मिली है तो उसका श्रेय उसको है कि जिसने शुरू के मां मंदा भाव के मां माल बेच के लोगों का उपकार किया। नहीं तो वे लोग लाखों रुपया लूटते वो तो दूर की बात रही, बल्कि सबको एक प्रकार से मंदा बेचना पड़ा, जिससे किसी का 10,000 किसी का 5,000 का घाटा लग गया। अरे घाटा लग करके कोई लाखों रुपये का घाटा हो गया, यदि वो लाख रुपया चंदा मांगता तो लोग उसको नहीं देते, और इस प्रकार से उससे चंदा ले लिया गया और लोगों का उपकार कर दिया गया। तो ये भी एक प्रकार से रास्ता है। दूसरी बात इसमें और है, इस प्रकार से थी आपने नहीं कर करके, और दूसरों की दृष्टि में ये बात रही कि जैसे 5 भाई रोजगार करने के लिए आया है और वो छठा भी आपने मानो रोजगार करने के लिए आया है, तो बाहर का तो उनका ये व्यवहार है कि मानो कोई आपने कंपटीशन करता है। दूसरा भाई जो माल 10 शेर का भाव माल बेचता है वो भी 10 शेर बेचता है, पड़ता एक समझो कि 10 शेर की है, किंतु रोजगार करने वाले तो 10 शेर के भाव बेचते हैं और वो कंपटीशन से 10 शेर बेचता है। लोग कहते हैं कि ये रोजगार करने के लिए आया, अपनी दुकानदारी जमाने के वास्ते 10 शेर के भाव बेचता है, और लोग उसकी देखा देख दूसरे भी 10 शेर बेचने लगे, कहते देखें तुम कितना नुकसान करते हो, और उसके वो भीतर से बड़ा खुश होता है। इसलिए खुश होता है कि हमको तो लोगों के उपकार की दृष्टि से यह काम करना है, किंतु हम इस बात को जाहिर कर देंगे कि हम लोगों का उपकार करने के लिए आए हैं तो कोई कंपटीशन के हिसाब से नहीं बेचेगा। देखेगा अरे ये तो उपकार करने के लिए है, हम तो कमाने के लिए आए हैं, इसका पीछा हम कैसे कर सकते, और इस बात को गुप्त रखेगा वो। और बाहर के बीच के वहां समझो कि एक व्यापारी बनकर ही आता है, और व्यापारी बनकर के आकर के भीतर का भाव ये है कि लोगों का उपकार करना है हमारे को, और उस काम के मां उसका भीतर का ये भाव है कि हमको इस काम के मां 5,000 रुपया मूल में से तोड़ देना है लोगों के उपकार के लिए। और दूसरों की दृष्टि में एक ऐसा है कि ये अपनी बिक्री बढ़ाने के वास्ते अपनी दुकानदारी जमाने के वास्ते ये कमती भाव के मां लॉस करके केसों बेचता है, आगे जाकर के ये लोगों को लूटेगा, तो अपने भी इसके साथ चलो देखो। तो इस प्रकार से उनको सबको अपने कंपटीशन में साथ लेकर के, और वह लखपति पैसे वाले समझो कि सबके 5-5, 10-10 हजार रुपये का घाटा लगा दिया, और गांव के बीच के मां 2 लाख का जुआरा पड़ गया, और उससे गरीब आदमियों को लाभ हुआ, लाभ तो हुआ लाखों आदमियों को, और नुकसान हुआ 100 आदमियों का, और वह 100 आदमी जी का धनी है, वह लखपति है, तो उसने सोचा कि इनसे मैं जी 5-5 हजार रुपये का चंदा मांगूंगा तो नहीं देंगे, और इस प्रकार से इनसे चंदा ले लिया जाएगा। इस बात को प्रकाश नहीं होने दे और दूसरों के सामने यही दृश्य रहे कि मानो ये एक कंपटीशन करने के वास्ते कमाने के वास्ते आया है, तो उससे और भी ज्यादा फायदा हुआ। दूसरा लोग क्या भैया एक बार तुम बहुत बाजार मंदा बेचता है, बोले भाई तुम भी बेचो, बोले तुम्हारे पड़ता कैसे होती है, बोले हम क्यों बतलावेंगे, तुम्हारा पड़ता हो तो बेचो नहीं सुन, तो बोले पड़ता ये किस तरह पड़ता बेचता है कि समझ में नहीं आता। बोले भैया तुम्हारे तो गायक बहुत आते हैं, तुम्हारी दुकानदारी तो अच्छी जम गई, बोले भाई यह बात है मंदा बेचने से जमती है, तुम भी अपने दुकानदारी जमानी तो मंदा बेचो। तो इस प्रकार से सब लोग देखा देखी, बोले चलो देखा जाएगा, तो आकर के भी इसके वहां समझो कि उस श्रेय का उसका सारा श्रेय उस पुरुष को है कि जिसका ये उद्देश्य, और उद्देश्य होकर के भी उसका ये उद्देश्य कोई कामना न लेकर के नहीं, स्वार्थ का त्याग होते हुए भी आपने समझो कि मान बढ़ाई न भी लेकर नहीं, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि भैया तुम तो एक प्रकार से माने सब ने ठग लिया, तेरा तो उद्देश्य पहला से 5,000 रुपया लोगों का उपकार करने का था, ये बात दूसरों से हमको मालूम पड़ी, अरे बोले दूसरों से मालूम पड़ी उनकी बात तुम क्यों मानते हो, या तू ये तो बदलाओ क्या नुकसान करने के लिए हमारे पास कहाँ। तो एक समझो कि ये एक छिपाव है, किंतु ये छिपाव है लोगों के उपकार के उद्देश्य से। तो किसी भी प्रकार से हो लोगों का जो उपकार करना और उपकार करके उसको जाहिर नहीं करना कि मैं उपकार करता हूँ, और भीतर के बीच के वहां ये समझना कि ये रुपयों का जो लोस हुआ है तो ये भगवान की दुकान में भगवान का ही हुआ, हमारे तो उससे कोई संबंध ही नहीं। रुपये भी भगवान के और लोस भी भगवान के, घाटा भी और नफा भी भगवान के। तो इस उद्देश्य से जो अपने व्यापार करता है कि अपना भगवान का गुमान स्थापन करके और मान बड़ाई प्रतिष्ठा कोई करता है तो उसको दुख होता है, वास्तव की माँ लज्जा होती है, और लोगों को कहता है कि भाई एक प्रकार से प्रसाद मेरा अपना मान क्यों करो, बढ़ाई क्यों करो, मेरी प्रशंसा क्यों करो, और हृदय के माँ वो बात उसको बुरी मालूम देती है। नारायण नारायण